वही क्षण हमारे धर्म ध्यान के हम, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए हम क्या विचार करेंगे या कि किस तरह से अपने मन को एकाग्र करेंगे उस समय। एक्चुअली एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि चिंतन की प्रक्रिया भी हम ध्यान मान के चलते हैं, जो हम चिंतन में होते हैं वो भी हमारा ध्यान है। निरंतर एक ही चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, फिर उसी चीज़ का चिंतन करते करते उसी चीज़ में एकाग्र पे कहीं रुक जाएंगे तो वो एकाग्रता हो जाएगी। किसी एक बात के बारे में हम सोचते हैं कि ये ऐसा है, फिर उसमें थोड़ी देर के लिए रुक गए, वो हमारा ध्यान है। लेकिन जो हम चिंतन कर रहे थे वो भी हमारा ध्यान है। तो निरंतर जो चिंतन है, सतत चिंतन, इसलिए विचय बोलते हैं अपन। इसमें देखेंगे कि आज्ञा विचय, ऐसा पहला तो विचय मतलब विचार करना, ये विचय का अर्थ है चिंतन करना। और चिंतन करते करते डीप में चले जाना और वहाँ कहीं एक अपने चिंतन पर रुक जाना, वो बेध्यान हो जाएगा, फिर वापस आएंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, उसी में एकाग्र हो जाएंगे। ये ध्यान चलता है। तो जहाँ पर मैं ये कहूँ कि चिंतन करना तो उसको भी ध्यान मानना, वो भी ध्यान की ही प्रक्रिया। तो धर्म ध्यान के चार भेद हैं, या कि धर्म ध्यान हम चार तरह से कर सकते हैं। नंबर वन आज्ञा विचय, इसमें अपन नाम लिख करके आज्ञा विचय, आज्ञा विचय, विचय वितरागी भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में श्रद्धा रखकर वास्तविकता का विचार करना, वास्तविकता का विचार करना। लीन वास्तविकता का विचार करना आज्ञा विचय, ये है धर्म ध्यान। इतना ही विचार करना। इसमें क्या करेंगे अपन, कोई भी चीज का विचार करेंगे तो तुरंत भगवान हमारे समझ में नहीं आ रहा, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म विनोदितम तत्वम, भगवान के द्वारा कही गई बात बहुत सूक्ष्म है, परमाणु भाव सूक्ष्म है, हमें तो दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, नहीं हमें भगवान पर विश्वास है, जो कुछ कहा गया है वही सही है, ऐसा करके और उस पर विचार करना। अब हम नहीं जानते कि परमाणु कैसा है, पर भगवान ने जैसा कहा है वैसा है। हम नहीं जानते मोक्ष मार्ग कैसा है, मोक्ष कैसा हमने देखा तो है नहीं, लेकिन हम जैसा भगवान ने मोक्ष का स्वरूप कहा है उस पर हमारी श्रद्धा है, उसी पर हम विचार कर रहे हैं। तो ये आज्ञा विचय, मतलब हम नहीं जानते कुछ भी, कोई व्यक्ति नहीं भी जानता हो, अज्ञानी भी हो, और वो ये कहे कि मैं जानता नहीं हूँ लेकिन भगवान ने तो मोक्ष का स्वरूप यही कहा है, या क्या कहा है ये भी नहीं मालूम, जैसा कहा है वैसा ही सच्चा है, तो ये कहलाएगा आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। आज्ञा ही प्रमाण है, ऐसा अपन आसानी से कर सकते। कहीं कोई तत्व चर्चा चल रही, अपने समझ में नहीं आ रही, उस समय कैसा मन में आ सकता है, कैसी चर्चा है, ये तो बेकार है, इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसा विचार नहीं करना, नहीं ये मेरे समझ में नहीं आती है, कहा तो भगवान ने सही है लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं आता है, ऐसा मान करके उसे स्वीकार कर लेना, तो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान की जाएगा तुरंत के लिए। फिर अपाय विचय, अपाय विचय नाम बहुत से कठिन है, बाकी है बहुत सरल। अपाय विचय, अपाय को उपाय भी बोलते हैं, अपाय या उपाय दोनों। निरंतर अपने और पर के आत्म कल्याण का विचार करना, ये अपाय विचय धर्म। निरंतर अपने और पर के आत्म कल्याण का विचार करना, कैसे मैं आत्म कल्याण करूंगा, इस तरह निरंतर चिंतित रहना। दूसरी चीजों के लिए तो चिंतित रहते हैं अपन कि कैसे परिग्रह जोड़ूं, कैसे संसार बढ़ाऊं, हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं ये विचार करना कि कैसे मैं जल्दी से अपना आत्म कल्याण करूं। ये भी एक धर्म ध्यान है, कुछ नहीं बन रहा है तो आत्म कल्याण की फिक्र है, चिंता है यही। फिर विपाक विचय, विपाक फ्रूटेशन इंग्लिश में कहेंगे उसके, विपाक विचय फ्रूटेशन, विपाक विचय। संसार में प्रत्येक जीव को अपने किए गए पुण्य और पाप का फल मिलता है, संसार में प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप का फल मिलता है। वह अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से सुखी और दुखी होता है। ऐसा निरंतर विचार करना, या फिर दूसरा समता पूर्वक कर्म का फल भोगना, ये भी हो गया विपाक विषय। ये तो कर्म का फल है, मैं शांति से भोगूंगा तो, और अशांति से भोगूंगा तो नए कर्म बनेंगे, शांति से भोगूंगा तो जो पुराने कर्म है वे अपना फल दिए बिना निकल जाएंगे, बात भी नहीं बिगड़ेगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, नया कर्म नहीं बनेगा, इतने प्रॉफिट है, चार चार बातें सब जाएंगी अगर शांति से भोग लूंगा तो। ये विपाक विषय, क्योंकि मेरे ही तो कर्मों का फल मिला है, किसी दूसरे ने दिया नहीं है। जब भी कोई सुख दुख आता है तो तुरंत जो है ऐसा विचार कर लेना, इसी का नाम विपाक विषय। फिर संस्थान विषय नंबर चार, संस्थान विषय, और संस्थान स्ट्रक्चर, संस्थान सिस्टम, पूरा सिस्टम, समूचे लोक के संस्थान यानी आकार प्रकार और उनमें रहने वाले जीवों की स्थिति का विचार करना। समूचे लोक के संस्थान अर्थात आकार प्रकार और उसमें रहने वाले जीवों की स्थिति का विचार करना। यही संस्थान विषय होगा ये, लेकिन चार प्रकार का होता है संस्थान विषय, इसके भी प्रकार लिख लीजिएगा, कितने तरह से संस्थान विषय किया जा सकता है। ये सामान्य व्यक्ति को नहीं होता, तीन ही धर्म ध्यान होते हैं सामान्य व्यक्ति को, किसी मुनि महाराज जी को विशेष तपस्वी होंगे तब संस्थान विषय ऐसा। श्रावक चाहे तो सामान्य रूप से ज्ञान के द्वारा चिंतन कर सकता है कि तीन लोक की रचना ऐसी है, यहाँ ये अधो लोक है, ये मध्य लोक है, ये उद्ध लोक है, अधो लोक में नर की जीव रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य तिरंच रहते हैं, उद्ध लोक में देव लोक रहते हैं, इस तरह से थोड़ा विचार करेगा तो कर सकता है। पर एग्जैक्ट जो संस्थान विजय है वो तो उसकी क्षमता के बाहर है। अब संस्थान विजय भी चार तरह से किया जाता है। नंबर वन पिंडस्थ, पिंडस्थ पिंड बोलते हैं, पिंड तो पिंडस्थ हो गए, आधा सा और था और पिंडस्थ। अनंत भगवान के शरीर की आकृति या कि आत्मा, अनंत भगवान के शरीर की आकृति या आत्म स्वरूप का चिंतन करना, यह हो गया पिंडस्थ। पिंड पूरा पिंड भगवान का कैसा शेप है, निराकार भी, अहंत अवस्था में भी, सिद्ध अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में कैसा आकार है, यज्ञ में जैसा उनका आकार है वैसा ही मेरे आत्मा का स्वरूप है। तो अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना या भगवान के आउटलाइन शरीर का चिंतन करना आकृति। पदस्थ, पद मतलब होता है कोई वाक्य, तो पदस्थ ध्यान में क्या करेंगे, पंच परमेश्वरी के वाचक पद अक्षर और मंत्रों का अनेक प्रकार से चिंतन है। पंच परमेष्ठी के वाचक, जल्दी बोलिए, पंच परमेष्ठी के वाचक पद, कई अक्षरों से मिलकर जो बनता है उसे पद कहते हैं, पद अक्षर और मंत्रों का चिंतन करना, ये पदस्थ ध्यान हो गया। नमोकार मंत्र का चिंतन कर रहे हैं वो पदस्थ ध्यान हो गया, पर इसमें डेप्थ आवश्यक है, वो सब पर चिंतन किया, किसी एक पद का, किसी एक अक्षर पर ही घंटों एकाग्र। फिर रूपस्थ, रूपस्थ नंबर थ्री, अपनी ही आत्मा का पुरुषाकार रूप में विचार करना। रूपस्थ अपनी ही आत्मा का पुरुषाकार रूप में विचार करना, अपनी ही आत्मा का पुरुषाकार रूप में विचार करना और रूपातीत नंबर चार, रूपातीत विचार और चिंतन से परे मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में लीन रहना। ये बहुत विचार और चिंतन से परे मात्र ज्ञाता दृष्टा अर्थात जानने देखने वाला हो करके साक्षी भाव जिसको कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में लीन हो जाना, ये रूपातीत है। उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि उसको और बहुत सारे नाना विकल्प लगे संसार के। जब वो संसार के विकल्प से पहले मुक्त होगा तब फिर इसमें उसकी एकाग्रता सर पाएगी। चिंतन तो कर लेना, एकाग्रता की बात है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में फर्क यही है कि अनुप्रेक्षा में निरंतर हम चिंतन करते हैं, वो तो श्रावक भी कर लेता, लेकिन जब निरंतर चिंतन की धारा चलती है और उसमें से किसी एक विषय पर अपने को एकाग्र कर दें तब वो कहलाएगा कि ध्यान। अनुप्रेक्षा और ध्यान में अंतर है, लिखना हो तो लिख लें। अनुप्रेक्षा और ध्यान में इतना ही अंतर है कि अनुप्रेक्षा में चिंतन की धारा निरंतर चलती रहती है, और अनित्य आचरण आदि रूप में अनित्य और अनित्य आचरण ये 12 भावना है ना, तो उसमें से अनित्य आचरण आदि रूप में परिवर्तित भी होती रहती है। थोड़ी देर अनित्य भावना करी, फिर आचरण भावना करी, ऐसे परिवर्तन भी कर लिया, तो अनुप्रेक्षा में चिंतन की धारा निरंतर चलती रहती है और अनित्य आचरण आदि रूपों में उसमें परिवर्तन भी होता है। ये लेकिन ध्यान के क्षणों में चिंतन धारा किसी एक विषय में केंद्रित या एकाग्र हो जाती है, लेकिन ध्यान के क्षणों में चिंतन धारा किसी एक विषय में केंद्रित या एकाग्र हो जाती है। ये जो है धर्म ध्यान मैंने उसका आंसर क्या दिया था मुझे याद है, मैं आपको अलग से पांच करके वो करके बता देता हूँ, है ना, दिया था ना, फिर बताइएगा आप कैसे आप उसको सामने कैसे बताएंगे। सबके बस का नहीं होगा, जबरदस्ती गड़बड़ा जाएंगे तो उसका अच्छा खाता अभी करते थे और गड़बड़ हो गई। एक ही दवाई सबके लागू नहीं होती ना, उसके लिए हाँ कितनी कितनी कैपेसिटी है उसको पहले देखना है, ये कर लोगे फिर पूछना पड़ेगा कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, आप क्या प्रक्रिया करते हैं उसमें, आप इतना संशोधन कर लीजिए, इतना और बढ़ा लीजिए, ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि एक जनरल प्रक्रिया सबको दे दी, अब वो नहीं कर पाएगा तो बहुत दुविधा में आता है कि लोग हम अच्छा खासा नमस्कार करते थे, अब ये प्रक्रिया और नहीं बन रही और कठिन है। वैसे बहुत सरल सी प्रक्रिया है रिपीटिशन बार बार करने की, जोर से करने की, फिर भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, इसलिए उसको सामान्य रूप से नहीं। शुक्ल ध्यान के बारे में लिखना है क्या? शुक्ल ध्यान एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, शुक्ल ध्यान के बारे में लिखना तो लिख तो सकते हैं पर एकदम समझ में नहीं आता। अब हम ये सोचें कि जो रूपातीत ध्यान है जिसमें कि हम अपने सिर्फ साक्षी भाव से जो कुछ घटित हो रहा है उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये धर्म ध्यान है। इससे जब रूपातीत ध्यान में लीन होकर के कोई और आगे बढ़ जाता है तब शुक्ल ध्यान तो कितनी कठिन चीज होगी। तो उसमें उसका ये लिखा है कि जहाँ गुण अत्यंत विशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम होने लगता है, या कि जहाँ लेशा शुक्ल हो जाती है उसे शुक्ल ध्यान, जहाँ धवलताएँ आना शुरू होती। अभी तो हम कर्मों को सिर्फ कहना चाहिए उन पर विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हमने कर्मों को हटाना भी शुरू कर दिया, तो ऐसा ध्यान जिसके द्वारा कर्म या तो शांत हो जाते, विशेष रूप से मोहनी कर्म, ये जो हमारा डेल्यूशन है वो डेल्यूशन खत्म होना शुरू होता है। तो मोहनी कर्म जहाँ उपशमित या क्षय को प्राप्त होने लगता, नष्ट होने लगता, वो ध्यान की ऊंचाई, उसको बोलते शुभिता, जहाँ सब तरफ धवलता। हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन धर्म ध्यान जैसे ही जहाँ खत्म होगा वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होगा, ये ध्यान रखते हैं। धर्म ध्यान चलते चलते रूपातीत ध्यान के बाद उतर जाएंगे शुक्ल ध्यान में और श्रेणी, इसलिए श्रेणी जो अपन ने देखी ना गुणस्थान, आठवां गुणस्थान, वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। और कोई कोई आचार्य मानते हैं कि नहीं, दसवें गुणस्थान के बाद होगा, जब उपशम होगा तब उपशान और क्षीण, क्षय होगा तो क्षीण से क्षय, इस तरह से ग्यारहवें और बारहवें में शुक्ल ध्यान होगा। तो कुछ मानते कि नहीं, जैसे ही श्रेणी चढ़ेंगे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे ही शुक्ल ध्यान हो जाएगा। ये कुछ थोड़ा सा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे निर्विकल्प दशा का नाम ही शुक्ल ध्यान है, कायदे से लिखा निर्विकल्प दशा, राग द्वेष से मुक्त दशा। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं। तो लिखवाए, जहाँ गुण अत्यंत विशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ होगी लिखिए, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम होता है, जहाँ लेशा भी शुद्ध होती है, ये लिखो। अच्छा, जहाँ गुण अत्यंत विशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम होता है, जहाँ गुण अत्यंत विशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम होता है, जहाँ लेशा भी शुक्ल हो जाती है, लेशा मतलब भाव दशा, जहाँ लेशा भी शुक्ल हो जाती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। सामान्य परिभाषा ये है। या दूसरी परिभाषा लिख लें, राग द्वेष आदि समस्त विकल्पों से रहित होकर, राग द्वेष आदि समस्त विकल्पों से रहित होकर अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना शुक्ल ध्यान है। इतनी ऊंची स्थिति हो गई, समस्त राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित होकर अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना शुक्ल ध्यान है। इसे परम निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, इसे परम निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इसमें उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चार अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है तो चार स्टेज बढ़ते हैं। इसमें उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चार दशा अवस्थाएं हैं। नंबर वन, लिखते ही बनेगा, बन तो जाएगा, पृथक वितर्क विचार, पृथक्व तो लिख लेंगे, फिर पृथक्व, फिर वितर्क, लॉजिक नहीं समझना, तर्क मतलब वितर्क, और विचार वाह वी वाला विचार विचार विचार, ये शुक्ल ध्यान, ये पहला वाला पृथक वितर्क विचार। इस ध्यान में प्रवेश करने वाले महामुनि रागादि विकल्प से मुक्त होकर, रागादि विकल्प से मुक्त होकर सहज ही, रागादि विकल्प से मुक्त होकर सहज ही अनेक द्रव्यों का पृथक पृथक आलंबन लेकर, ये पृथक लिखा है इसलिए अनेक द्रव्यों का पृथक पृथक आलंबन लेकर, ये पृथकत्व हो गया। और फिर वितर्क मतलब अर्थ व्यंजन और योगों में परिवर्तन करते हुए, अच्छा पहले पूरा लिख लो फिर हमारा समझा देना, ऐसा कर लो, सहज ही अनेक द्रव्यों का पृथक पृथक आलंबन लेकर, एक बात हो गई, अर्थ व्यंजन और योगों में परिवर्तन करते हुए, अर्थ व्यंजन और योगों में परिवर्तन करते हुए शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ध्यान करते हैं, ये हो गया आलंबन लेकर, अर्थ व्यंजन और योगों में परिवर्तन करते हुए शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ध्यान करते हैं। कितनी कंडीशन हो गई? अब जैसे कोई व्यक्ति मुनि महाराज जी हैं, ध्यान में लीन हो गए तो राग द्वेष से तो मुक्त हो गए। अब काय का चिंतन करें तो कहते किसी भी एक द्रव्य का है, जीव द्रव्य का कर सकते, अजीव उद्गल का कर सकते, धर्म अधर्म किसी न किसी एक द्रव्य का किया है। अब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में चले गए, दूसरे से तीसरे का करने लगे थी, तो ये परिवर्तन कर रहे हैं ना, पृथक पृथक, तो पृथक हो गया। फिर वितर्क, अब उसमें से भी जो है वितर्क का मतलब होता है व्यंजन अर्थ योग संक्रांति, जिसमें और क्या परिवर्तन करेंगे, अर्थ का परिवर्तन कर लिया, अभी किसी दूसरे अर्थ का कर रहे थे, अब अर्थांतर दूसरे अर्थ का करने लगे, व्यंजन किसी व्यंजन का कर रहे थे, अब दूसरे व्यंजन, व्यंजन होते ना शब्दों में, उस व्यंजन का करने लगे। फिर अभी मन से कर रहे थे, वचन वचन योग में स्थिर होकर करने लगे, अब काय योग में स्थिर होकर कर, तो योगों का परिवर्तन भी हो गया। तो इसको बोलते हैं वितर्क। तो विचार, विचार मतलब होता है श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। किस तरह से अपन ने तीन चीजें लिख ली, अलग अलग द्रव्यों का आलंबन लेते हैं पृथक पृथक, फिर अर्थ व्यंजन योग संक्रांति में परिवर्तन कर लेते हैं, और शुद्ध ज्ञान का मीडिया बनाते हैं किस तरह से, इसलिए इसका नाम पृथक वितर्क और विचार। अब दूसरा, जब इससे भी ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे, एकत्व वितर्क और अविचार, इस तरह से एकत्व वितर्क और अविचार, वितर्क अविचार, ये इस नाम का शुक्ल ध्यान है। दूसरा इसका नाम, इस ध्यान में प्रवेश करने वाले महामुनि एकत्व वितर्क अविचार, इस ध्यान में प्रवेश करने वाले, इस दशा में जब प्रवेश करते हैं, इस ध्यान में प्रवेश करने वाले महामुनि एक ही द्रव्य का आलंबन लेकर एकत्व हो गया, एक ही द्रव्य का आलंबन लेकर एक ही योग में स्थिर रहकर आत्मा में लीन हो जाते हैं। अब शुद्ध का आलंबन नहीं लेते, अपने आत्मा का आलंबन ले लेते हैं और आत्मा में लीन,
एक ही योग में
स्थित रहकर आत्मा में लीन हो जाते हैं। इस ध्यान में प्रवेश करने वाले महामुनि एक ही द्रव्य का आलंबन लेकर एक ही योग में स्थित रहकर आत्मा में लीन हो जाते हैं। इस ध्यान की पूर्णता होते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ये उतना ऊंचा ध्यान है। इस ध्यान की पूर्णता होते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये केवली भगवान के लिए के पहले की दशा है। अब बाकी दो ध्यान होंगे वो केवल ज्ञान के बाद। नंबर तीन, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, इसका नाम है। इस ध्यान में प्रवेश करने वाले केवली भगवान, अब सीधा सीधा है, इस ध्यान में प्रवेश करने वाले केवली भगवान सहज ही, मतलब कोई प्रयास नहीं करते, सहज ही समय आ जाने पर सहज ही मन वचन काय का निरोध करके, अभी तो किसी न किसी का आलंबन ले रहे थे, अब सब हटा दिया, मन वचन काय का निरोध करके मात्र सूक्ष्म काय योग का आलंबन लेकर, इसलिए सूक्ष्म क्रिया है, मात्र सूक्ष्म काय योग का, ये स्थूल है शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर, तो उसका आलंबन लेंगे, सूक्ष्म काय योग का आलंबन लेकर शेष कर्मों का क्षय करने में तत्पर हो जाते हैं। यही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित, अब प्रतिपादित आलंबन लेकर शेष कर्मों का क्षय करने में तत्पर हो जाते हैं। अभी हुए नहीं है क्षय, लेकिन अब तत्पर हो गए इस ध्यान, तीसरे ध्यान में। जब चौथा ध्यान करेंगे तब फिर सारे कर्म से हो जाएगा, निरोध करके, एब्सेंस। ये 13-14 गुण स्थान की बात, इतने मुझे, और वो 12वें गुण स्थान की अंतिम समय की बात है, ये जो एकत्व वितर्क हुआ है। सूक्ष्म क्रिया आप प्रतिपाषण, फिर नंबर 4, समुच्छिन्न, समुच्छिन्न सा माने छुट्टी की मात्रा, आधा चा छाने छुट्टी की मात्रा, आधा ना, फिर पूरा समुच्छिन्न,
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति। इस ध्यान में समस्त क्रियाएं श्वासोच्छ्वास आदि भी समाप्त हो जाती हैं। ये हो गया, श्वास का भी निरोध कर दिया। अभी तो मंदोदन का श्वास रह गई थी, श्वासोच्छ्वास का भी। इस ध्यान में समस्त क्रियाएं, इसलिए इसको किया है समुच्छिन्न क्रिया, सब क्रियाओं को उच्छिन्न कर दिया है, नष्ट कर दिया। इस ध्यान में समस्त क्रियाएं श्वासोच्छ्वास आदि समाप्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा शरीरातीत होकर समाप्त हो जाती है। इस ध्यान के फलस्वरूप आत्मा शरीरातीत होकर शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है। शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा सबको। शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए, 14 पूर्व का ज्ञाता होना चाहिए। माने जितना श्रुत हो सकता है वो पूरा मालूम होना चाहिए। उत्तम सहनन चाहिए, 14 पूर्व का ज्ञाता होना चाहिए। क्योंकि यह ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। जिसको ये हो गया फिर वो बिना मुक्ति लिए नहीं उठने वाला। ऐसा ध्यान अपने को होगा नहीं, पर अपन कम से कम इमेज तो करेंगे।
ध्यान का रकम से
नहीं, ये तो शुक्ल ध्यान कोई भी नहीं। शुक्ल ध्यान तो ठीक है, धर्म ध्यान का आखिरी पाया भी नहीं होगा। संस्थान विजय जब वो हो जाए फिर शुक्ल ध्यान हो, तो वो ही नहीं होगा। उसके लिए बहुत सहन चाहिए, धर्म ध्यान का लाभ।
शुक्ल ध्यान का एक बार फिर से
धवलता का ध्यान, शुक्ल ध्यान, जिससे हम अपने गुणों में माने निर्मलता लाते हैं, हमारी भाव दशा भी निर्मल हो जाती है और क्रम क्रम से निर्मलता आती है। पहले क्या करते हैं, जब कोई भी साधु तो पहले ही मन वचन काय की क्रियाओं को, अशुभ क्रियाओं को रोक चुके हैं, राग द्वेष से परे हो चुके हैं, अब ध्यान में लीन हुए तो राग द्वेष तो हट गए, लेकिन अब वो कोई ना कोई मन वचन काय में से किसी न किसी में तो ध्यान करें। तो थोड़ी देर के लिए मन पर चला गया ध्यान, फिर वचन पर चला गया, फिर शरीर पर चला गया, तो मन वचन काय को परिवर्तित किया। अब मन में विचार कर रहे थे तो पहले किसी अर्थ का किया, मान लो एक नहीं पहले किसी द्रव का, अब द्रव को आलम्बन बनाएंगे, सबसे पहले तो जीव द्रव को बना लिया। अब जीव द्रव में भी जीव पद है, तो इस पद का जीव के कितने अर्थ हो सकते, जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीवा। ये ध्यान रखना कि वो पूरे शुद्ध ज्ञान के पारगामी हैं, अकेला जीव कहने से पूरा शुद्ध ज्ञान बता देंगे वो। अपन तो जीव के बारे में ये कहेंगे कि हाँ जो जीता था जीता है, जिएगा वो जीव कहलाता है। उसके दो भेद होते हैं, स्थावर और दस होते हैं, दस इतने होते हैं स्थावर। एक पद पे उनने ध्यान टिकाया जीव पर, तो जीव के बारे में राय रत्ती जानेंगे, उसी को डिसेक्ट करते जाएंगे अकेले मन से, फिर वाणी से, फिर शरीर से। तो अभी तीनों मन वचन काय का परिवर्तन हो रहा है, जीव से अजीव द्रव का परिवर्तन हो रहा, ये सब कुछ चल रहा। फिर अर्थ, फिर दूसरे अर्थ का, एक अर्थ का फिर दूसरे अर्थ का, एक व्यंजन मतलब उसकी एक पर्याय का फिर दूसरी पर्याय का, फिर योग तो हो ही गया मन वचन काय इस तरह से। और इसके आलम्बन से जो जाना है शुद्ध ज्ञान, उसके आलम्बन से इतना सब कुछ, अभी आलम्बन इतना है, इतना आलम्बन ले रहा है, इसलिए इसको सूक्ष्म नहीं कह रहे, इसको कह रहे पृथक वितर्क और विचार। फिर अब इसमें से भी क्या किया, मैं तो किसी एक योग में लीन हूं, और बारीक कर लिया, किसी एक योग में एक का आलम्बन ले लिया, उसमें से किसी एक अर्थ का अब परिवर्तन नहीं करेंगे, जिस अर्थ का कर रहे हैं उसी अर्थ में लीन है। अब एकाग्रता धीरे धीरे, अब वो नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना, स्थिर हो जाना है। तो किसी एक योग में स्थिर होके और श्रुत का आलम्बन भी नहीं लेना है, अपने आत्मा का ही आलम्बन लेकर के। अब ज्ञान का काम नहीं है, अब तो अपने आत्मा में लीन होने का। तो ये हो गया पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क और अविचार। बस इतना होते ही साथ चार कर्म नष्ट हो, जैसे इस ध्यान में लीन होंगे तो चार कर्म नष्ट हो गए, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान जितने समय तक रहना है, संसार की स्थिति है कि अब आयु बहुत लंबी है, 60 साल की और बढ़ती आयु, तो अभी ध्यान नहीं करेंगे जब, नहीं तो अभी ध्यान करके मोक्ष कैसे जाएंगे, जब तक आयु कर्म है। तो जितनी आयु कर दें उतने शेष रह गए, उतने समय तक केवल ज्ञान का आनंद मिलेंगे, सबको उपदेश करेंगे, बैठे रहेंगे भगवान। केवल ज्ञान होने के बाद 30 साल तक बैठे रहे, 42 साल में केवल ज्ञान हो गया, 72 साल तक भगवान की दिव्य देशना होती रही केवल ज्ञान। अब जब 2 दिन शेष रह गए, अब देख लेंगे कितना काम बचा है, 4 दिन के लायक है कि 2 दिन के लायक है, तो उस हिसाब से योग निरोध करेंगे। योग निरोध करने का नाम ही ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादन, सहज रूप से उनको कोई प्रयास नहीं करना है अब, लेकिन वेट करना है कि आयु जैसे ही समाप्त होने लगे उसके पहले, तो फिर उसके बाद समोचरण छोड़ के बैठ गए, तीनों मन वचन काल का आलंबन छोड़ दिया। और सूक्ष्म शरीर भी था तो स्थूल था, तो उसमें से भी जो सूक्ष्म शरीर है भीतर, उस सूक्ष्म शरीर का आलंबन लेकर के और कर्म तत्पर हो गए शेष कर्मों को नष्ट करने में। 3 कर्म बचे, आयु कर्म, आयु का तो नाश किया नहीं जाता, वो तो अपने आप पूरी हो रही, लेकिन नाम गोत्र और वेदनी कर्म, इनका इनको 6 होना शुरू हो जाएगा, तो तत्पर हो गए। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसका भी निरोध कर देते, सूक्ष्म का योग का भी निरोध कर दिया, श्वासोच्छ्वास भी चली गई, और कितना सा समय
समाधि,
बस समाधि जैसी स्थिति, निर्विकल्प समाधि है एक तरह से, और शरीर को भी छोड़ दिया, पहले स्थूल शरीर को छोड़ा, फिर और सूक्ष्म सूक्ष्म छोड़ते छोड़ते और शरीर में से निकल जाना है, शरीर टूट जाएगा और उसके साथ जो कर्म थे वो भी अलग हो जाएंगे। एक तरह से ब्लास्टिंग वाली कंडीशन है कि सब कुछ जो है कवच था वो सब टूट गया, इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि उसमें से निकल करके और ऊपर तीन लोग के विराजमान, ये प्रक्रिया है।
शुक्रिया,
नहीं कोई जरूरी नहीं है, नहीं जिनकी आयु
कपूर
की तरह उड़ जाता है, कपूर की तरह विषय अलग से कुछ शेष नहीं बचता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म इतना ध्यान हो गया कि सब कुछ जल जाएगा, एकदम प्योर हो गई है बॉडी उनकी, ये ऐसा तो शरीर रह नहीं जाता, पहले ही प्योर हो गया था 2 ध्यान के बाद, फिर क्या शेष रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कपूर की तरह, कपूर की डिगली जैसी वैसा रहेगा, उसमें आत्मा रुकी हुई है वो और गल जाएगा इस तरह की। लेकिन स्वर्ग में पुण्य कर्म करके जाना स्वर्ग में वो अलग है, और साधना करके जाना अलग है, क्योंकि हाँ दोनों में बराबर लगता है कि मुनि महाराज जी भी सोल में स्वर्ग में, श्रावक जी भी सोल में स्वर्ग में, तो का मतलब होगा तुम प्रपंच करो इतने श्रावक सोल में ही जाने, तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, एक तपस्या के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करता है, वहां से आकर के पुनः जो है मोक्ष की तैयारी करता, और एक जो श्रावक होगा वो बिना तपस्या के स्वर्ग प्राप्त कर लेता, वहां के विषय वो भोगेगा, आनंद मनाएगा, फिर पाप का बंद करके फिर संसार में आएगा। इतना फर्क है, दो ही फर्क में गए सोलवा स्वर्ग मुनि महाराज को भी, और श्रावक यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, पंचम काल में 3 सड़े सहनन से 1 सड़े शरीर से, अगर बद्ध पैसा हो तो बता देते थे लोकांतिक बन सकते हैं, लोकपाल हाँ लोकपाल भी एक भवतारी है, लोकांतिक चारों दिशा
केवल ज्ञान के बाद, मतलब आहा
ज्ञान समान ज्ञान जगत में दुख को कारण
दक्षिण नाम क्यों है,
दक्षिण के लोकपाल नहीं, दक्षिण के तो इंद्र दक्षिणेंद्र, सौधर्म ऐशान नहीं सौधर्म, सानत कुमार महेंद्र नहीं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नहीं, लांतो तापस
नहीं,
12 स्वर्ग में से 16 स्वर्ग में से 12 इंद्रों में से 6 जाएंगे 6 नहीं जाएंगे। एक और
है
वैसे सिलेक्शन है, एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है।